是，所以你看之前啊，接受 this art new20 आप सबके लिए मंगलकारी हो। कल हमने विल पावर के विषय में सुना जाना कि विल पावर इच्छा शक्ति में कितनी शक्ति है, और इच्छा शक्ति के पीछे मन का दृढ़ संकल्प होता है, और मन के दृढ़ संकल्प के पीछे भगवान की भक्ति होती है, सत्य होता है, अहिंसा होती है और ब्रह्मचर्य होता है। अगर मनुष्य के पास यह संपत्ति है तो इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है, और मनुष्य अपने ऊंचे ऊंचे संकल्पों को पूरा करके समाज के लिए एक आदर्श छोड़ जाता है। आज मैं आपको फरवरी 1974 से, अक्टूबर 1974 का समय से लेकर आगे जो कुछ घटनाएं घटी उनके विषय में कुछ बताना चाहूंगी। फरवरी 1974 में मंदिर के निर्माण कार्य में श्री महाराज जी अधिक व्यस्त रहे। श्री महाराज जी अधिक समय मंदिर में रहते, भक्त लोग प्रातः और सायं उनके पास आते जाते रहते। कुछ अंतर भक्त मंदिर में रहकर भोजन आदि की समुचित व्यवस्था करते। मंदिर के आसपास का उबड़ खाबड़ क्षेत्र धीरे धीरे ठीक किया जा रहा था। ऊपर से मंदिर के साथ रहने वाले सन्यासी भी स्थान छोड़कर चला गया था, इसलिए सब ध्यान अनिवार्य था। मंदिर के सामने ब्यास नदी के तट पर घाट बनाने का कार्य भी शुरू कर रखा था। कार्य अधिक था, परंतु कोई ऐसा त्यागी बहुत नहीं था जो बाबा के साथ दिन रात रह सके। बड़ी कठिनाई से सीताराम नाम का एक योग्य वसी वैरागी साधु मिला जो मंदिर में रहने लगा। वह प्रातः साय आरती पूजा करता, फिर भोजन आदि की व्यवस्था करता, दिन के समय दर्शनार्थियों को चरणामृत प्रसाद भी दिया करता। सीताराम मंदिर में आ गया तो कठिनाई कुछ कम हुई। उन दिनों प्रातः काल उठकर मंदिर आती और यथा शक्ति सेवा करती, 8 बजे घर लौटती, फिर पाठशाला जाती, और कभी कभी सायकाल भी कुछ महिलाओं के साथ और चीत शादी लाजी में अधिक साथ देते थे, वो ही आ जाते थे और हम रात को इसमें घर वापिस आते थे। अब मेरा मन धीरे धीरे मंदिर में ज्यादा रहने लगा, और मैं शरीर को जबरदस्ती घर वो स्कूल से धकेलती और मंदिर में ही रहना चाहती थी। परिणाम ये हुआ कि पाठशाला में भी किसी प्रकार की रुचि न रही, कभी कभी पढ़ाई की घंटी भी छूट जाती, घर पर मन न लगता और जब सुन लगता तभी पांव मंदिर की ओर चल पड़ते। कई बार तो प्रातः 4 बजे ही अकेले निकल पड़ती और मंदिर पहुंचने के पश्चात भोर का प्रकाश होता। रास्ते में कई प्रकार के भय मन में उदित होते, परंतु राम नाम का जाप सब भय से मुक्त कर देता था। कई बार घर में माता जी भी नाराज हो जाती, कहती की रात हो मंदिर जाना उचित नहीं, परंतु मेरी साधना तेल की धार जैसी बढ़ती ही रही। सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए मेरे पग मंदिर की ओर बढ़ते ही रहे, और श्री महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा, और मैं छुट्टियों में ही मंदिर में ही ज्यादा समय देती थी। एक दिन प्रातः मंगलवार को जब मैं मंदिर के सारे कार्य करके 8 बजे घर की ओर आना चाहती तो सीताराम पंडित अपने मंदिर वाले वस्त्र पहन कर नंगा ही महाराज जी के पास आया और कहने लगा, महाराज जी मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाना चाहता हूँ। उसमें महालाला साधु राम के आशीष भी खड़े थे। श्री महाराज ने सीताराम की बात सुन ली और कहा, सीताराम ने प्रणाम करने के लिए कोशिश की तो श्री महाराज जी ने आगे जी के आगे से झुकाया तो श्री महाराज जी ने एक पैर उसके सिर पर दबा कर कहा, क्यों रे, बाबा का अपमान करके जाना चाहता है, कपड़े क्यों खोल दिए, कपड़े पहन कर जाओ। परंतु सीताराम ने सुनी अनसुनी कर दी और सीढ़ियां उतर कर चला गया। अब और अधिक कठिनाई हुई। श्री महाराज सारा दिन नीचे घाट के काम में लगे रहते, मंदिर में भी घाट और घाट में भी, दोनों ओर का कार्य संभालना कठिन हो गया। भोजन की कौन कहे, इसलिए भोजन पकाकर मेरे माता जी दिन के समय जो कि उसमें जयंती में पड़ता था, श्रीमती कमला बहन जी का बेटा उसके हाथ में भोजन भेज दिया करती थी। रात को कभी कभी भक्त लोग आकर भोजन पकाते, बाबा को इस प्रकार कार्य देख कर मेरे हृदय में एक तीस उठती और मन कहता छोड़ दे, सेवा का अवसर है इसे पकड़ ले। परंतु ये सूक्ष्म आवाज शीघ्र ही दब कर रह जाती, फिर भी अब मन अधिकतर मंदिर में ही जमा रहता। इस वर्ष मंदिर की जिम्मेवारी और अधिक बढ़ गई। मंदिर में कोई भी उत्सव जैसे दिवाली आदि मनाया जाता तो महाराज जी कहते कि उत्सव मंदिर में ही मनाओ मम्मी जी, घर क्यों जाना है। और मैं भी उनके आग्रह को टाल नहीं सकती थी और मैं मंदिर में उत्सव मनाती थी, लेकिन मंदिर में इस प्रकार की तल्लीनता देखकर मेरे माता जी और भाई बहन बहुत ही चिंता में पड़ जाते थे। इन्हीं दिनों वैष्णो देवी की यात्रा का भी प्रबंध हुआ था। श्री महाराज जी ने दिसंबर में वैष्णो देवी की पैदल यात्रा की थी। मेरा मन अब किसी निश्चयात्मक स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत व्याकुल हो चुका था। किन्हीं दिनों श्री महाराज जी ने कहा कि बाबा कुल्लू से वैष्णो देवी तक पैदल यात्रा करेगा, कुछ एक अंतर भक्ति पैदल यात्रा के लिए तैयार हो गए। श्री महाराज जी ने मुझे भी पैदल यात्रा पर चलने के लिए कहा, परंतु मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इतनी लंबी पैदल यात्रा पर जाना मेरे लिए सामाजिक दृष्टि से ठीक ना था, और कोई स्त्री तो साथ थी ही नहीं। इस पर श्री महाराज जी ने कहा, जब बाबा कटड़ा पहुंच जाएगा तो तार देगा और आप भक्तों को लेकर कटड़ा आ जाना, वहाँ से हम सब इकट्ठे होकर माँ के दर्शनों के लिए जाएंगे। 1977 को प्रातः श्री महाराज जी पैदल यात्रा पर चल पड़े, उनके साथ चार अन्य भक्त भी थे। मंदिर का कार्य एक अन्य भक्त को सौंपा गया था। 13 दिन की पैदल यात्रा के बाद श्री महाराज जी कटड़ा पहुँचे और वहाँ से तार आया कि 3 दिसंबर को कटड़ा पहुँच जाओ, मैं कुछ अंतर भक्तों को साथ लेकर कुल्लू से पठानकोट जम्मू होते हुए कटड़ा पहुंची। कटड़ा में श्री महाराज जी के दर्शन हुए, सब खुशी खुशी से श्री महाराज जी से बातचीत करने लगे और आगे जाने का कार्यक्रम बनने लगा। लेकिन कटड़ा में भारी वर्षा होने के कारण माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाना कठिन हो रहा था, पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही थी, इसलिए रास्ता बंद हो गया था और 2-3 दिन हमें कटड़ा में ही विश्राम करना पड़ा था। 6 दिसंबर को कटड़ा से यात्रा आरंभ की। वर्षा तो थम चुकी थी परंतु ऊपर पहाड़ पर भारी हिमपात के कारण यात्रा कठिनतम हो गई थी। दोनों ओर बर्फ की बड़ी बड़ी दीवारें थी और बीच में तंग रास्ता। भक्त सब प्रकार की कठिनाइयों को सहते हुए आगे बढ़ रहे थे, माँ का जयकारा बोल रहे थे। श्री महाराज जी का अदम्य उत्साह और श्रद्धा और भक्ति हम सबको इन प्रकार की कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता प्रदान कर रहा था। आखिर सायंकाल हम सब दरबार में पहुंचे, धर्मशाला में कमरा ले लिया, वहाँ कुछ देर विश्राम करके श्री महाराज जी समाधि में चले गए और हम सब दरबार की ओर आ गए। वहाँ हमें रात बजे 12 बजे दर्शनों का समय मिला, इसलिए पुनः धर्मशाला में आ गए। आधी रात को पुनः माँ की गुफा के सामने करबद्ध खड़े हो गए, पंक्तिबद्ध हम सब भीतर गए। भीतर माँ के दर्शन से मन एक अपार आनंद की अनुभूति में लीन हो गया। इससे पूर्व की मुझे माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि इससे पहले मैंने 5 बार इस गुफा में आकर माँ के दर्शन किए थे, परंतु इस बार तो माँ का साक्षात्कार ही हो गया। मुझे ऐसा लगा कि माँ ने अपनी ज्योति मेरे भीतर मेरे हृदय में जगा दी है। बस दर्शन करने के पश्चात मन को वैराग्य और विवेक ने आ घेरा और संसारित वो ममता सब रफू चक्कर हो गयी। विद्या आनंद में जीवन लीलाधारी श्री महाराज जी को मेरे मन की बात का पता चल गया और मैंने उनको अपनी अनुभूति के बारे में भी बताया तो वह हंस दिए। ऐसा लगने लगा मुझे कि माँ भीतर बैठकर आवाज दे रही है, नौकरी छोड़ दे, घर छोड़ दे। बार बार यही आवाज आती, माँ की ममता त्याग दे तथा सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर तू भगवत कार्य कर। दूसरे दिन पहाड़ उतर कर सब कटड़ा पहुँचे और रात्रि कटड़ा में रहकर फिर जम्मू और पठान को होते हुए हम शाहपुर नामक गांव में आए। वहाँ एक रात्रि रहकर एक मंदिर को पुनः जागृत किया स्वामी जी महाराज जी ने। वहाँ जनता ने श्री महाराज जी को बताया कि ये मंदिर बड़े चाव से बनाया गया था, माँ की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हुई है, परंतु माँ का ये मंदिर शमशान जैसा लगता है, लोगों को वहाँ जाने से बहुत भय लगता है। तब श्री महाराज जी ने रात को वहाँ ठहर कर माँ का वात्सल्यमयी रूप पुनः जागृत किया, रात्रि जागरण किया, माता माँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कन्या पूजन किया, प्रसाद बनाकर सबको बंटवाया। दूसरे दिन आगे चले ज्वालामुखी, चिंता, पुण्य, कांगड़ा और चामुंडा होते हुए सब देवियों के दर्शन करते हुए 12 दिसंबर 1974 को सायकाल कुल्लू पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देते हुए जय माता दी, गीता माँ।